आरव आयु के पास गया तो वो बेहोश थी। उसे होश में लाने के बाद आयु से कुछ बातें करके आरव बाहर आया। आरव के बाहर आने तक डिनर खत्म हो चुका था और वो वहीं गार्डन एरिया में दूसरी तरफ से बैठे हुए थे। आरव के जाने के बाद माहिरा थोड़ी बेचैन हो गई थी, लेकिन उसे देखते ही उसे राहत मिली तो वहीं प्रिया इतनी देर से माहिरा के हरेक एक्सप्रेशन को नोटिस कर रही थी। माहिरा का इस तरह आरव के लिए बेचैन होना उसे परेशान कर रहा था। आरव को वहां देखते ही माहिरा बोली, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने देखा कि तुम बात करते हुए अचानक गायब हो गए थे। इज एवरीथिंग ऑल राइट आरव? आरव ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 11 बजने को आए थे। आरव ने उनसे कहा, अगर बिजनेस मीटिंग आज नहीं है तो कैन आई लीव? मैं काफ़ी थक गया हूँ और आप जानते हो कि मुझे इस तरह लोगों के बीच रहने की आदत नहीं है। कोई कुछ कहता उससे पहले प्रिया जल्दी से बोल पड़ी, हाँ हाँ, अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, जाकर अपने कमरे में आराम कर सकते हो। वैसे भी मिस लूथरा ने कहा है कि वो बिजनेस मीटिंग कल करने वाली है। हाँ, तुम जा सकते हो, मैं भी काफ़ी थक गई हूँ, मुझे भी घर ही जाना था, माहिरा ने जवाब दिया। हालांकि उसका जाने का बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आरव के बिना वहाँ उसका होना कोई मतलब नहीं रखता था। ठीक है, फिर मैं मिस लूथरा को अच्छे से बाय बोलकर ही जाऊँगा, आरव ने माहिरा की तरफ देखते हुए सख्त अंदाज में कहा। वो जानबूझकर अपनी पर्सनैलिटी उस आरव खुराना की तरह मेंटेन कर रहा था जो उसे नए जन्म के रूप में मिली थी। अगर वो कुछ भी ऐसा रिएक्ट करता जो पिछले जन्म से जुड़ा हुआ होता तो माहिरा को समझते देर नहीं लगती कि आरव को सब याद है। कुछ देर हल्की फुल्की बात करने के बाद माहिरा वहां से चली गई। वो अपनी गाड़ी में थी, ड्राइवर गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जबकि माहिरा के दिमाग में आरव ही चल रहा था। अचानक उसने किसी को कॉल पर कनेक्ट किया और कहा, मुझे युवराज खुराना के बेटे की हर एक इन्फॉर्मेशन चाहिए, हर छोटी से बड़ी। वो कब पैदा हुआ था, उसकी स्टडी कैसे हुई, उसका स्कूल, कॉलेज, बाकी जगह, बिहेवियर कैसा था। आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग, मीन्स एवरी सिंगल डिटेल, और कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। कॉल पर बात करने के बाद माहिरा सीट पर लीन हो गई। उसने आंखें बंद की और धीरे से कहा, पता नहीं हम इतना लेट क्यों मिल रहे हैं, पहले जितनी भी देर कर ली हो, लेकिन अब एक मिनट की भी देरी नहीं करनी है मुझे। सब जानना है मुझे तुम्हारे बारे में आरव, तुम्हें फिर से अपना बनाना है, तुम्हें तो मैं याद भी नहीं हूँ, और कितना अजीब बिहेवियर है तुम्हारा। आरव के बारे में सोचते हुए वहीं गाड़ी में माहिरा को कुछ देर में नींद आ चुकी थी। वहीं माहिरा के जाने के बाद प्रिया युवराज और आरव को तिरछी निगाहों से घूर रही थी। प्रिया अपनी नाराजगी जताते हुए बोली, ये क्या था, तुम दोनों बाप बेटे उस लड़की के सामने कुछ ज्यादा ही शरीफ नहीं बन रहे थे। मैं कह रही हूँ आरव उस लड़की के साथ कोई मीटिंग नहीं करेगा, और मैं उसे लड़की ही क्यों कह रही हूँ, वो आपकी उम्र की है, और आरव की तरफ कितनी अजीब नज़रों से देख रही थी, उसकी नज़रों से ही मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। आरव उस लड़की से आज के बाद नहीं मिलेगा, और आयु के बिना तो बिल्कुल नहीं, ये बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैं इसकी माँ हूँ और इसके लिए मुझे डिसीजन लेने का हक है। मेरा बेटा ऐसी औरत से नहीं मिलेगा जिसके आसपास होने पर मुझे ही अच्छी वाइब ना आ रही हो। प्रिया जिस तरह से आरव के लिए प्रोटेक्टिव हो रही थी, ये देखकर उसके चेहरे पर हल्की जेन्युइन स्माइल आ गई। आरव प्रिया के पास आया और उन्हें अपने सीने से लगाकर कहा, इतना भी प्रोटेक्ट नहीं करना चाहिए अपने बेटे को कि वो भूल जाए कि वो बड़ा हो गया है। मैंने अकेले रहने का डिसीजन लिया था तब सिर्फ आप ही मेरे साथ खड़ी थीं, तो अभी यकीन रखिए मैं अपने साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन मुझे उस औरत को देखकर नेगेटिविटी फील हो रही है। अरे, इतने सारे पैसे हैं आप लोगों के पास, बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है भगवान की कृपा से, फिर क्या जरूरत है फिर ऐसे घटिया प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने की, प्रिया ने रुआंसी आवाज में कहा। प्रिया मानने को तैयार नहीं थी। तब आरव ने युवराज की तरफ आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया। उन्होंने पलकें झपकाकर आरव को सब संभालने को कहा। युवराज प्रिया के पास आए और उन्होंने उसे आरव से अलग करके कहा, तुम औरतें सच में अपने बच्चों को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो जाती हो। अरे, बच्चा नहीं रहा है आप तुम्हारा आरव, इसकी शादी हो गई है, कुछ दिनों में इसके खुद के बच्चे हो जाएंगे। हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ, आप भूल गए हो कि इसकी शादी हो गई है, और आप ये बात उस औरत से भी छुपाना चाहते हो। आपको जो भी बिजनेस मीटिंग रखनी है रख लीजिएगा, आज के बाद वो औरत इस घर में नहीं आएगी, और आप खुद हैंडल कर लीजिएगा, मेरा बेटा उससे नहीं मिलेगा, प्रिया ने सख्त आवाज में कहा। अच्छा ठीक है, बहुत जिद्दी हो तुम, युवराज ने हार मानते हुए कहा। वो प्रिया को अपने साथ लेकर चले गए। उनके जाते ही आरव की दादी जसलीन ने आरव की तरफ देखा, जो अब तक काफी शांति से पूरी बातें सुन रही थी। उनकी नजरें पड़ते हुए आरव कंधे उठाकर बोला, अब आप तो मुझे ऐसे मत देखिए, तुम्हारी मॉम गलत नहीं कह रही थी, वो हमेशा से सेंस कर लेती है कि कौन सी चीज तुम्हारे लिए सही है या कौन सी गलत। तुम्हें उसके सिक्स सेंस पर यकीन करना चाहिए और उस औरत से दूर रहना चाहिए, मुझे भी वो ठीक नहीं लगी, जसलीन ने गंभीर आवाज में कहा।
आरव ने बिना कुछ कहे उनकी बात पर हामी भरी। बात को टालने के लिए उसने जसलीन को गुड नाइट विश किया, जिसके बाद वो सोने के लिए चली गई। आरव वहां अकेला खड़ा प्रिया की बातों के बारे में सोच रहा था। अचानक आरव के मुंह से निकला, मेरे साथ डेस्टिनी ने कितने भी खेल क्यों ना खेले हों, मेरे हर प्यार करने वाले को मुझसे दूर कर दिया, पर इस लाइफ में मैं सच में बहुत लकी हूँ कि मुझे आप मेरी मॉम के तौर पर मिली। कोई इतना प्रोटेक्टिव और स्वीट कैसे हो सकता है? आप बिल्कुल मेरी आयु की तरह हो, जो अपने बच्चों से इतना प्यार करती थी कि उसके लिए सबसे लड़ जाती थी। बोलते हुए आरव की आंखें हल्की नम होने लगी। फिर उसे याद आया कि उसने आयु को रूम में बंद किया था। आरव जल्दी से आउटहाउस के कमरे में गया। आयु को बंद करने के बाद वो लगभग आधे घंटे बाद वापस आया था। आरव के दरवाजा खोलते ही आयु उसकी तरफ घूर कर देख रही थी। ऐसे देखते हुए तो और भी ज्यादा हॉट लग रही हो, आरव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा और आयु की तरफ जाने लगा। आयु कुछ कहती उससे पहले आरव ने उसे पकड़कर अपने करीब खींच लिया था। उसके हाथ आयु की बैक पर चल रहे थे। मुझे नींद आ रही है और भूख भी बहुत लगी है, तुम्हें मेरी बिल्कुल परवाह नहीं ना, जो पहले अपनी एक्स से मिलने चले गए और फिर मेरे को कमरे में बंद कर दिया। बहुत बुरे हो तुम आरव खुराना, आयु ने आरव की आंखों में देखते हुए कहा। अब लग रही हो ना मेरी मिसेस खुराना, जो हर बात पर यही कहते थे कि तुम बहुत बुरे हो आरव खुराना। हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ। तुम्हें क्या लगता है, मैंने उनके साथ ठीक से डिनर किया था? आधे से ज्यादा टाइम तो मैं तुम्हारे साथ आ गया था। चलो आओ साथ में खाते हैं, आरव ने जवाब दिया और आयु को अपनी गोद में उठा लिया। आयु आरव के करीब नहीं आना चाहती थी, पर वो खुद भी नहीं समझ पाती थी कि आरव के करीब आने पर वो उसे रोक क्यों नहीं पाती है। अब भी उसने कुछ नहीं कहा, जब आरव जानबूझकर उसके पीठ पर सेडक्टिवली हाथ घुमा रहा था या अब उसे गोद में उठा लिया था। तुम मेरे साथ कंफर्टेबल हो, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो, आरव ने आयु के एक्सप्रेशंस को नोटिस करते हुए कहा, जो खोई हुई नजरों से उसकी आंखों में देख रही थी।
आयु ने कुछ पल आरव की बात का कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो अचानक आरव की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम्हारी तरह मुझे सब कुछ याद नहीं आ सकता आरव? आयु की बात इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि कहीं ना कहीं उसे आरव पर यकीन होने लगा था। अचानक ही आरव की आंखों के सामने वो सीन आ गया जब वो डॉक्टर जैन के थेरेपी रूम में था। भले ही उसे सब कुछ याद आ गया हो, लेकिन उन कुछ घंटे में उसने जो टॉर्चर झेला था वो उसने अब तक किसी से नहीं कहा था। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, चलो आओ डिनर करते हैं और ज़्यादा मत सोचो, वैसे भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो डिनर के बाद तुम्हें पनिशमेंट मिलने वाली है, आरव ने आयु को टालने के लिए कहा और फिर मुस्कुराते हुए उसे चेयर पर बिठा दिया। आयु ने आगे कुछ नहीं कहा, पर अब उसके दिमाग पर सब याद करने की धुन सवार हो चुकी थी।